नमस्कार भारत, शनिवार 14 जनवरी, मैं हूं निखिल रंजन। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह पर तकरार के बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन के लिए लगाया जोर। खादी के कैलेंडर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर विवाद। महात्मा गांधी के परिवार का दावा, बापू की पहचान को हाईजैक करने की कोशिश।
विश्वविख्यात तस्वीर के पोज में बापू की तस्वीर हो, वैसा ही एक पोज फोटोग्राफ बना के वो आइडेंटिटी को ही हाईजैक करने की चेष्टा की गई है।
विवेचना में आज रेहान फजल याद कर रहे हैं जनरल JFR जैकब को, जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को समर्पण पर किया था मजबूर।
Suppose he says no, what do I do if he doesn't agree? I went in after 30 minutes. I asked him, do you accept this instrument to surrender? He never answered. I asked him 3 times. So I picked it up and said.
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। जापान की टकाटा कॉरपोरेशन ने अमेरिका के न्याय विभाग की एक जांच में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और $1 अरब का हर्जाना देने के लिए तैयार हो गई है। टकाटा के बनाए एयरबैग्स को दुनिया भर में कम से कम 6 मौतों से जोड़ा गया है। आरोप है कि टकाटा ने एयरबैग की खामियों को छुपाया। ये खामियां सामने आने के बाद सुरक्षा कारणों से लाखों गाड़ियों को वापस भी लिया गया था। टकाटा कॉरपोरेशन के 3 अधिकारियों पर मामला भी चलाया जाएगा। अधिवक्ता बारबारा मैक्वेड ने बताया,
The plea agreement specifies that Takata will pay a penalty of $1 billion.
समझौते के तहत टकाटा को $1 अरब का दंड देना होगा। अभी समझौते को अदालत से मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके तहत 97.50 करोड़ डॉलर सुधार पर खर्च करने होंगे, जबकि $2.5 करोड़ का हर्जाना चुकाना होगा। टकाटा पर 3 साल तक नजर भी रखी जाएगी। पश्चिमी अफ्रीका के नेताओं की गाम्बिया के राष्ट्रपति याहिया जमेह से मुलाकात कर उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मनाने की अंतिम कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। चुनाव जीतने वाले नेता एडामा बैरो ने एकोवास समूह के नेताओं के साथ देश छोड़ दिया है और अब वो माली में क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एडम बैरो को अगले गुरुवार को गाम्बिया के राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। उन्होंने कहा कि वार्ता जारी रहनी चाहिए। वहीं अफ्रीकी यूनियन का कहना है कि वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति जमेह को मान्यता नहीं देगी। हिंसा के डर से हजारों गाम्बियावासी पड़ोसी देशों सेनेगल और गिनी बिसाउ चले गए हैं। अफ्रीकी यूनियन ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि यदि निर्दोष लोगों की जानें गईं तो राष्ट्रपति जमेह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दवान ने कहा है कि तुर्की के सभी सैन्य बलों को साइप्रस से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइप्रस के एकीकरण के किसी भी समझौते के तहत तुर्की के सैनिक तब तक नहीं हटेंगे जब तक ग्रीस के भी सभी सैनिक द्वीप से वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने इस्तांबुल में संवाददाताओं से ये भी कहा कि साइप्रस को लेकर होने वाले समझौते की गारंटी के लिए तुर्की के सैन्य बल हमेशा साइप्रस द्वीप पर मौजूद रहेंगे। तुर्क मूल के साइप्रस वासियों ने भी यही राय जाहिर की है। ये आवाज तुर्क मूल के एक निकोसिया वासी की है। यदि तुर्क सैनिक वापस चले गए तो अफरा तफरी मच जाएगी। तुर्क सैनिक इस द्वीप पर शांति की गारंटी है। वो ग्रीक साइप्रस वासियों के लिए भी शांति लेकर आए हैं। उन्हें यहाँ हमेशा बने रहना चाहिए। ग्रीक साइप्रस के नेता निकोस अनास्तासियाडोस का मानना है कि समझौता भी होना चाहिए और तुर्क सैनिकों को द्वीप भी छोड़ना ही चाहिए। अमरीकी संसद की खुफिया मामलों की समिति ने राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल के आरोपों की जांच करने का फैसला लिया है। समिति का कहना है कि जांच पैनल इस बात का पता लगाएगा कि रूस और अमरीका में चुनाव अभियानों में शामिल लोगों के बीच कोई संपर्क था या नहीं। समिति मौजूदा ओबामा प्रशासन से जुड़े लोगों और आने वाले ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ करेगी। आइवरी कोस्ट की सरकार का कहना है कि उसने वेतन को लेकर विद्रोही सैनिकों से समझौता कर लिया है। सैनिकों के प्रतिनिधियों और रक्षा मंत्री के बीच चली कई घंटों की वार्ता के बाद ये दोनों पक्षों के बीच 1 सप्ताह के भीतर हुआ दूसरा समझौता है। इस दौरान देश के कई शहरों में गोलीबारी होती रही। BBC समाचार।
बीबीसी रेडियो पर शनिवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच विधानसभा चुनाव में साइकिल का चुनाव चिन्ह किसके पास होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले खेमों ने कल चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी दलीलें रख दी। अब इंतजार चुनाव आयोग के फैसले का है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गुट ने कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ गठबंधन की कोशिशें तेज कर दी है। बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार की रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं वात्सल्य राय।
साइकिल पर दावा और उस पर सवार होने वाले साथियों की तलाश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके सहयोगी एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबियों का दावा है कि अगर चुनाव आयोग का फैसला पक्ष में नहीं आता है तो भी उन्होंने दूसरे विकल्प तैयार कर रखे हैं। वहीं अखिलेश गुट कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने की कोशिश में भी जुटा है। अखिलेश यादव के करीबी MLC उदयवीर सिंह कहते हैं,
इसमें तमाम बड़े नेताओं का बयान आ चुका, आज जयंत चौधरी का भी बयान है, कांग्रेस की तरफ से भी है, हमारी पार्टी से भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हम लोग स्पष्ट सरकार बनाने की स्थिति में हैं। सारे दलों को एक साथ आने की बात होती है। हमारी पार्टी भी चाहेगी कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो किनारे किया जाए और सब लोग मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो 300 से ज्यादा सीट कराएंगे।
इस गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सवाल पर उदयवीर सिंह कहते हैं कि अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। वहीं अब तक अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे रही है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी नसीब सिंह ने BBC से कहा,
बातचीत चल रही है और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, जितनी भी सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाली पार्टियां हैं सभी को एक मंच पर लाने की बात कांग्रेस के नेता लोग कर रहे हैं। अब वो कहां तक पहुंचेगी ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें JDU भी है, उसमें RJD भी है, TMC भी है और RLD भी है, ये सब पार्टियां आपस में बात कर रही हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठजोड़ में शरीक हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहना चाहते। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव मसूद अहमद ने BBC को बताया,
आज भी जैन जी का संदेश मिला है। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल का प्रोग्राम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो उन्होंने वहाँ से स्टेटमेंट दिया है समाजवादी से गठबंधन जो है सिंबल क्लियर होने के बाद किया जाएगा। और चौधरी अजीत सिंह जी अभी 3 दिन पहले बस्ती में आए थे, 4 दिन पहले उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें BJP को हराना है।
अखिलेश यादव की अगुवाई में तैयार हो रहे गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस को भी लाने की तैयारी है। हालांकि इन दोनों दलों का उत्तर प्रदेश में खास आधार नहीं रहा है, लेकिन गठबंधन तैयार करने की कोशिश में जुटे नेताओं का मानना है कि अगर ये गठजोड़ हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी दलों को एकजुट करने में मदद मिल सकती है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर बहस शुरू हो गई है। कैलेंडर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरखे के साथ तस्वीर है। मोदी की तस्वीर चरखे के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर की याद दिलाती है। विपक्षी दल और कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय सक्सेना इसे फिजूल की आलोचना बता रहे हैं। बीबी संवाददाता प्रदीप कुमार से बातचीत में उन्होंने बताया कि 70 साल में खादी के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विजन दिखाया है, तो फिर उनकी तस्वीर छापने में गलत क्या है?
ऐसा कोई रूल नहीं है कि गांधी जी की तस्वीर को डायरी और कैलेंडर पर कंपल्सरीली रखा जाएगा। 1996 में गांधी जी की तस्वीर नहीं थी, 2002 में नहीं थी, 2005 में नहीं थी, 2011 में नहीं थी, 2013 में नहीं थी, 2016 में भी नहीं थी। नंबर 2, गांधी और खादी इनसेपरेबल है। KVIC गांधी जी के आइडियल्स पर ही चलती है। प्रधानमंत्री की जो तस्वीर जो डायरी कैलेंडर्स में देखने को मिली है वो 18 अक्टूबर 2016 की है, जब उन्होंने 500 चरखे पंजाब में 500 महिलाओं को दिए। 1945 में गांधी जी के कहने पर कामराज जी ने 500 चरखे बांटे थे मदुरई जिले में, और उसके 70 साल के बाद ये पहली दफा 500 चरखे प्रधानमंत्री द्वारा बांटे गए। क्या आपने देखा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने खादी के प्रति इतना उत्साह दिखाया हो?
ये जो फैसला था इसके लिए तो आप लोगों ने बैठ के सलाह मशविरा किया होगा।
कमीशन की पावर में है, कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ले सकती है फैसला। और प्रधानमंत्री मोदी एक यूथ आइकन है, उनकी तस्वीर से यूथ अट्रैक्ट होता है। पिछले 10 सालों में खादी का जो सेल था वो 2% से 7% के बीच में होता था, वो कभी डबल डिजिट नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद लास्ट ईयर खादी का सेल 34% बढ़ा।
राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी से पूछा कि वो इस बहस को किस तरह से देख रहे हैं।
मजबूरी है कि जब भी कोई प्रतिष्ठा की बात आती है या जब भी किसी चीज में एक एंडोर्समेंट की जरूरत होती है तो किसी न किसी स्वरूप में बापू के ही किसी प्रतीक को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है उनको, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो वो बापू को मानते नहीं है, वो लोग एडमिट भी कर चुके हैं कि उनकी आइडियोलॉजी विपरीत है। तो ये महज एक अटेम्प्ट है कि विचार ना सही, जो चीज विश्व भर में बापू के साथ एकदम संलग्न हो उसी को हम अपने साथ जोड़ दें।
इस बदलाव को लेकर दलील भी दी जा रही है कि पहले भी कैलेंडर में डायरीज में बापू की तस्वीरें नहीं गई थी, दूसरी तस्वीरें गई थी।
ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिस विश्वविख्यात तस्वीर के पोज में बापू की तस्वीर हो वैसा ही एक पोज्ड फोटोग्राफ बना के वो आइडेंटिटी को ही हाईजैक करने की चेष्टा की गई है।
भारत में महात्मा गांधी या गांधीवाद केवल प्रतीक और संकेतों तक नहीं है, ऐसी स्थिति में इसके और क्या व्यापक स्वरूप आप देखते हैं?
जो बापू की जो एक विश्व मान्यता है उस मान्यता से अपने आप को भी उसी प्रकार से विश्व पुरुष दिखाने की कोशिश एक मिथ्याभिमान है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। और मुझे इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, उनको अधिकार है ये करने का। सिर्फ उसमें एक सच्चाई होना जरूरी है कि भाई हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री प्रतीक बने, बापू बहुत सालों तक बन रहे, अब प्रधानमंत्री बने, ये हमारी इच्छा है और इसलिए हम ये करेंगे, तो फिर उसमें सच्चाई का एक तत्व भी आ जाए। इसमें तो फिर ये बताने की कोशिश की जाती है कि नहीं ये गलती हो गई, किसी अफसर ने गलती कर दी, हमने कोई आदेश नहीं दिया था। ये
जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं स्वच्छता मिशन शुरू हुआ, उसका भी जो सिंबल है वो बापू का चश्मा ही है। उन्होंने लगातार अपने मन की बात में खादी इस्तेमाल करने की बात की और ये दलील भी दी जा रही है कि खादी की बिक्री उससे बढ़ी।
खादी की बिक्री नहीं बढ़ी है, खादी की बिक्री बढ़ती तो जो पारंपरिक कारीगर है जो खादी का काम अपने पुरखों से सदियों से करते आ रहे हैं उनकी स्थिति में फर्क पड़ा होता। ये सिर्फ KVIC ने जो पॉली वस्त्र बनाया है खादी का सब्सिट्यूट, उसकी बिक्री बढ़ी होगी शायद नेतागणों में।
महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और अब आज अखबारों में क्या कुछ छपा है इस पर नजर डाल लेते हैं। दिलनवाज पाशा आ चुके हैं। जी दिलनवाज।
जी निखिल, आजकल व्हाट्सएप पर एक चुटकुला खूब घूम रहा है कि बेटे ने जब भी साइकिल की जिद की है बाप को दिलानी पड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल की बात अलग है। चुनाव आयोग ने सुनवाई की है कि साइकिल मुलायम गुट को मिले या अखिलेश गुट को मिले और इस पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। अमर उजाला का शीर्षक है साइकिल किसकी, सस्पेंस कायम। और यही सवाल यूपी के वोटरों के दिमाग में भी है कि साइकिल किसे मिलेगी। और इसी से जुड़ी एक खबर आज के द हिंदू के पहले पन्ने पर है, साइकिल को लेकर फैसले अभी जो है नहीं आया, ये चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। और इसी वजह से जो लखनऊ में चुनाव प्रचार सामग्री जो है प्रकाशित करा ली जाती है पहले से बहुत सारी चुनाव के लिए, उसको लेकर के अभी असमंजस बरकरार है कि अब इसका क्या होगा, वो बिक भी नहीं पा रही और दुकानदार उसको रखे बैठे हैं। इसके अलावा दैनिक जागरण की एक खबर जो है ध्यान खींच रही है, पश्चिम बंगाल में हुए रोज वैली घोटाले की आँच शाहरुख खान तक पहुँच गई है। ये आज का अखबार बता रहा है। कल भारत के सेना प्रमुख ने एक प्रेस वार्ता की थी, आपको याद होगा भारतीय सेना के कई जवानों के वीडियो आए हैं और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर नहीं रोएं दुखड़ा, सेवादारी करनी ही होगी। तो ये बयान भारत के सेना प्रमुख का आया है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए।
BBC इंडिया बोल।
क्या सैन्य बलों में सैनिक की कोई इज्जत है या उसे सिर्फ राष्ट्र सम्मान का प्रतीक बनाकर छुट्टी पाली गई है? पिछले दिनों कुछ सैनिकों ने सोशल मीडिया पर आंखें खोलने वाले वीडियो जारी करके खराब स्थितियों की शिकायत की। सेना प्रमुख ने अब कहा है कि सैनिक सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सीधे उनसे शिकायत करें। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई सैनिकों की किसी को परवाह नहीं है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 14 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो फोन करना मत भूलिएगा। और अब विवेचना। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल जैक फॉज रफेल जैकब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनको ही फील्ड मार्शल मानिक शाह ने पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि 93,000 सैनिक भारतीय पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। जनरल जैकब की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल।
16 दिसंबर 1971 की दोपहर, ढाका में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हथियार डालने से पहले पाकिस्तानी सेना के चोटी के अफसर दिन का खाना खा रहे थे। ऑब्जर्वर अखबार के संवाददाता गाविन यंग मेस के बाहर खड़े थे। उन्होंने वहीं खड़े हुए जनरल जैकब से पूछा, सर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं? सब लोग अंदर पहुंचे। जैकब ये देखकर दंग रह गए कि डाइनिंग हॉल में करीने से मेजें लगी हुई थी, कांटे छुरी और नैपकिन सजे हुए थे। जैकब को खाने की दावत दी गई लेकिन जैकब का खाने का मन नहीं हुआ। वो उसी कमरे के कोने में अपने सहायक कर्नल एमएस खाड़ा के साथ खड़े होकर बात करने लगे। पाकिस्तानी अफसरों ने बहुत लुत्फ लेकर रोस्टेड चिकन खाया। बाद में गाविन यंग ने अपने अखबार में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था सरेंडर लंच। उसी दिन की सुबह पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जेएफआर जैकब के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर भारतीय सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ थे। कुछ साल पहले मुझसे बात करते हुए जनरल जैकब ने बताया था,
मानिकशॉ फोन्स, Jake, go and get a surrender. I said, I've already sent you a draft surrender document. Do I negotiate on that? He said, you know what to do, just go.
Manik Shah ne mujhe phone kiya. Jake, jao aur surrender lo. Maine kaha main aapko pehle hi aatmasamarpan ka masauda bhej chuka hoon. Kya main uske aadhar par Pakistaniyon se baat karun? Sam bole, tumhe maloom hai tumhe kya karna hai. Bas tum wahan jao. मैं वही दस्तावेज लेकर ढाका पहुंचा। ढाका हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मार्क हेनरी ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने पेशकश की कि वो सरकार पर नियंत्रण करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया लेकिन उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की। पाकिस्तान सेना ने मुझे लेने के लिए एक ब्रिगेडियर को कार के साथ भेजा हुआ था। जैसे ही हम पाकिस्तानी कार में आगे बढ़े, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने हमारी कार पर गोली चलाई। मैं कार का दरवाजा खोलकर चिल्लाया, इंडियन आर्मी। उन्होंने फायरिंग तो रोक दी लेकिन वो मेरे साथ चल रहे ब्रिगेडियर को मार डालना चाहते थे। किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर नियाजी के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही मैंने उन्हें आत्मसमर्पण का दस्तावेज पढ़कर सुनाया, नियाजी बोले, कौन कह रहा है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? मैंने उन्हें कोने में बुलाया और उनसे कहा, मैंने आपको बहुत अच्छी शर्तें दी हैं। अगर आप हथियार डालते हैं तो हम आपका और आपके परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं आपको सोचने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला आया। मैंने सोचा, मैंने ये क्या कर दिया? उनके पास ढाका में 26,400 सैनिक थे जबकि हमारे पास सिर्फ 3,000, वो भी ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर।
जब जैकब आधे घंटे बाद कमरे के अंदर घुसे तो वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था।
Aurora is going to land, ceasefire expires, what's going to happen if he doesn't agree? I went in after 30 minutes.
मैंने सोचा अगर ये ना कह देते हैं तो मैं क्या करूंगा? एक घंटे में अरोड़ा वहां लैंड करने वाले थे। मैंने नियाजी से पूछा, क्या आप आत्मसमर्पण की शर्तों को स्वीकार करते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार उनसे यही सवाल किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने आत्मसमर्पण के दस्तावेज को ऊपर उठाकर कहा, आपके जवाब न देने का मतलब है कि आप इसे स्वीकार करते हैं।
जैकब ने नियाजी से कहा कि आत्मसमर्पण समारोह रेस कोर्स मैदान में ढाका की जनता के सामने होगा। नियाजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर जैकब ने नियाजी से कहा कि वो तलवार का सरेंडर करें।
See, I told Niazi to surrender sword. He said, I don't have a sword. So I just surrender your pistol. So he took off his pistol, tears in his eye and gave it to Aurora. That's all.
मैंने नियाजी से कहा कि वो तलवार सरेंडर करें। उन्होंने कहा, मेरे पास तलवार नहीं है। तब मैंने कहा कि आप अपनी पिस्टल सरेंडर करें। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और भरी हुई आंखों के साथ अरोड़ा को सौंप दी। जब दस्तखत करने का समय आया तो नियाजी के पास कलम नहीं था। वहीं बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता सुरजीत सेन ने अपना कलम पेश किया। इस बीच दोनों जनरलों के बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। दस्तखत होते ही वहां मौजूद भीड़ नियाजी को मार डालना चाहती थी। हमने उनके चारों ओर एक घेरा बना दिया और फिर एक जीप में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया।
1923 में कोलकाता में जन्मे जनरल जैकब यहूदी परिवार से आते थे। 1942 में भारतीय सेना में आए जनरल जैकब ने दूसरे विश्व युद्ध में मध्य पूर्व, बर्मा और सुमात्रा की लड़ाई में भाग लिया था। 15 कोर की कमान संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जनरल जैकब को बचपन से जानते थे और उन्हें अंकल जेक कहकर पुकारते थे।
पहली दफे जब मैं उनसे मिला था 1961 की बात है, मैं उससे पहले हमारे खानदान के साथ उनका नाता 1951 से जुड़ गया था, जबकि वो अहमदनगर में मेरे वालिद साहब के साथ वो पोस्टर थे और बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। 1961 में वेलिंगटन नीलगिरीज तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन है इंडियन आर्मी का, वहाँ पर दोनों पोस्टर थे और मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। जनरल जैकब तो बैचलर थे ही, जैसे आपको मालूम है, उनके साथ उनके एक मित्र थे जनरल हरी शिंगल। हर वक्त आना जाना हमारे घर में होता था इन दोनों का, क्योंकि ये लोग तो बैचलर क्वार्टर्स में रहते थे और इनको खाना जो भी मेस का मिलता था वो खाते थे, मगर अक्सर शाम की का वक्त जो था इनका आमतौर पर बिताया जाता था हमारे घर में, जहाँ पर शेर व शायरी होती थी और जोक्स क्रैक किए जाते थे। और जब भी ये रात के वक्त पिक्चर देख के कभी आते थे 11:30-12 बजे, उनको खाना नहीं मिलता था तो आकर आमतौर पे मेरी माँ से ये विनती करते थे कि हमें कुछ खाना दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल जैकब जो थे उनके अर्ली ईयर्स एफ्टर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर, अब माई रिमेम्बरेंस जो है, मेरी रिमेम्बरेंस है, वो प्राइमरली एक वन ऑफ अ फन लविंग पर्सन, कैफ्री पर्सन बट हाईली प्रोफेशनल। अदरवाइज खेल जानते थे बहुत से, वो उनकी हॉबीज जो थी फिशिंग, एंगलिंग, एक उनसे ही मैंने सीखी एंगलिंग। और पहला उन्होंने मुझे एंगलिंग का जो टैकल था सबसे पहले जिंदगी में किसी ने मुझे दिया तो उन्होंने दिया था मुझे।
जैकब बहुत अच्छे चित्रकार थे और उन्हें एंटीक चीजें जमा करने का भी शौक था। उनको कविताएं पढ़ना भी बहुत पसंद था और वो ब्रिज खेलने के भी शौकीन थे।
उन दिनों में भी ये आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते थे और आई थिंक बहुत अच्छे वेल ट्रैवल्ड इंडिविजुअल थे, तो इनके पास दुनिया भर की चीज़ें थी। और खासियत इनकी थी कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स, इनके पास एक कलेक्शन ऑफ पर्शियन कारपेट्स था जो बाद में मैंने इनके घर में देखा नहीं जब मैं ये सोम विहार में रहते थे, ना मैंने इतने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखे, तो वो कहीं ना कहीं एयरलूम के तौर पर कहीं रखे होंगे। मगर हर अच्छी चीज़ दुनिया की, द फाइनर पॉइंट्स ऑफ लाइफ के, ये अप्रिशिएटर थे हर वक्त। और खाने में मुझे ये याद है कि जब ये पूना में थे और हम लोग, हमारा ख़ानदान वेलिंगटन से हम कार में चला कर आ रहे थे दिल्ली आ रहे थे, हमारे सेंटर लैंसडाउन जा रहे थे, तो रास्ते में इनके साथ रुके और ये पहले दफ़े हम लोगों को खाने के लिए ले गए दुराबजी रेस्टोरेंट में, बड़ा मशहूर पारसी रेस्टोरेंट जो है पुणे कंटोनमेंट का। और वहाँ मैंने ज़िंदगी की पहली नान खाई, मुझे याद है, और हर अच्छा नॉन वेजिटेरियन डिश जो आप सोच सकते हैं बस उस दिन हाजिर था। तो इनको मालूम था कि किस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है लोगों को, जो अच्छे वेल हील्ड लोग हैं वो कैसे इंजॉय करते हैं। ही वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एट दैट। आपको मालूम होना चाहिए कि शायद फौज में आमतौर पर ब्रिज को एक इंटेलेक्चुअल गेम समझा जाता है, बहुत दुनिया भर में ही समझा जाता है। एंड जनरल्स जो हैं खासतौर पर इनको बहुत पसंद होता है खेलना, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो मैनिपुलेटिंग योर ओपोनेंट, उसके बारे में होता है। तो हर दोपहर को ये लोग बैठ कर खेला करते थे। एंड वेलिंगटन जैसी जगह में वक्त बहुत कम मिलता है इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि बहुत करेक्शन का काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स का जो सबमिशन होता है। तो वो इंस्ट्रक्टर जो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हों, जो बहुत जल्दी करेक्शन करते हैं और बहुत क्विक ऑन दी अपटेक हैं, वही ब्रिज खेलने के लिए उनको वक्त मिलता है। सो आई डू रिमेंबर के इनको वक्त मिलता था और मेरे वालिद साहब को वक्त मिलता था, सो दे आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीपल।
1997 में जब उनकी किताब सरेंडर एट ढाका छपी तो उसमें उनकी एक टिप्पणी से काफी बवाल मचा कि मानिक शाह ने ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना को दिया ही नहीं। मैंने जनरल जैकब से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते थे।
आई डोंट नो व्हाट हिज रीजंस वर, ऑल आई नो दैट द ओनली ऑर्डर्स I got for to take Khulna and Chittagong. We had a long argument. I told him Khulna was only a minor port, a river port.
मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे कारण क्या थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे सिर्फ खुलना और चटगांव पर कब्जा करने का आदेश मिला था। मेरी उनसे लंबी बहस हुई। मैंने कहा कि खुलना एक छोटा सा नदी बंदरगाह है और चटगांव का भी कोई बहुत ज्यादा सामरिक महत्व नहीं है। अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें ढाका पर कब्जा करना ही होगा। मानेकशॉ बोले, अगर हम खुलना और चटगांव ले लेते हैं तो ढाका अपने आप गिर जाएगा। मैंने पूछा, कैसे? ये तर्क चलते रहे और हमें सिर्फ खुलना और चटगांव पर कब्जा करने के लिए ही लिखित आदेश मिले। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल इस बात की पुष्टि करते हैं कि ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने कभी रखा ही नहीं गया। हमारा लक्ष्य था बांग्लादेश की निर्वासित सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना।
बाद में जनरल जैकब की इस बात पर काफी आलोचना हुई कि शायद वो 1971 के युद्ध की सारी वाहवाही खुद लेना चाह रहे थे और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के योगदान को कम करके आंक रहे थे। जनरल अता हसनैन इस बात को सही नहीं मानते।
चीफ ऑफ स्टाफ कमांड, जो अपॉइंटमेंट था उनका उस वक्त, एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दिल्ली में, इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मैं कैप्टन हूं, आई मे हैव अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एंड ओपिनियन विद माय आर्मी चीफ, पर इसका मतलब नहीं कि मेरा परसेप्शन जो है वो सही है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई थिंक जो जनरल जैकब साहब कहते थे वॉज ए ओपिनियन विच ही वॉज एक्सप्रेसिंग, एंड उसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड इट्स अ गुड थिंग, किताब में आप लिखिए अपना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, किताब आपकी है, आप अपने थॉट्स, अपने विचार जो हैं उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पर। तो आई थिंक नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग दैट। ये मेरे ख्याल में मीडिया ने बाद में इसके ऊपर ज़्यादा बात बढ़ाई कि ही हैड अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन विद द फील्ड मार्शल। मैं आपको इतना बताऊं कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ वॉज द कमांडेंट ऑफ स्टाफ कॉलेज 1961। वो जनरल जैकब को बेहद चाहते थे, ये मैं विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू दिस, क्योंकि अमंग द फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स मेरे वालिद साहब एक उनके बड़े फेवरेट इंस्ट्रक्टर थे और जनरल जैकब भी थे उनमें से एक, एंड ही यूज्ड टू नॉर्मली रिलाई ऑन दिस फ्यू इंस्ट्रक्टर्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर हिम। और जब सैम मानेकशॉ खुद ही ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे तो उन्होंने इनको चीफ ऑफ स्टाफ मांगा था। दैट इज हाउ जैकब साहब पहुंचे एज चीफ ऑफ स्टाफ टू कलकत्ता। तो पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त थी, प्रोफेशनल डिफरेंसेस इस तरीके के स्ट्रेटेजिक मैटर्स में जनरल्स के बीच में बहुत दफे आते हैं, बट दैट डज नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप्स इन एनी वे।
जैकब की मौत से कुछ महीने पहले मैंने उनसे पूछा कि 16 दिसंबर 1971 की रात को जब आप ढाका से कोलकाता वापस लौटे तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे।
मैंने सोचा जो हमारा जवान उसका जान दिया, who died in action, उनके लिए हमारा thoughts था। We lost 1,400 killed, 4,000 wounded, हमारा thoughts उनके लिए था। देश उनको पूरा credit नहीं देता, देने चाहिए। We should remember them. They made the jawans, ये जवान उनका बहादुरी से बांग्लादेश आजादी किया।
जनरल जैकब 1978 में सेना से रिटायर हुए। बाद में उन्हें गोवा और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। जैकब की जितनी इज्जत भारत में थी उतनी ही इसराइल में भी। जॉन कॉल्विन की यहूदी सैनिक हीरोज पर लिखी किताब लायंस ऑफ जूदा में जनरल जैकब का भी जिक्र है। इसराइल के सैनिक म्यूजियम में भी जनरल जैकब की वर्दी अभी तक टंगी हुई है। वो भारत और इसराइल के बीच मजबूत रिश्तों के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने इसराइल जाकर बसने के सभी ऑफर्स को नामंजूर कर दिया था। उनका कहना था, मुझे यहूदी होने पर गर्व है, लेकिन मैं भारतीय था और हमेशा भारतीय रहूंगा और इसी जमीन पर मैं अपनी अंतिम सांस लेना चाहूंगा। रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
जापान की टकाटा कॉरपोरेशन ने अमेरिका के न्याय विभाग की एक जांच में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और $1 अरब का हर्जाना देने के लिए तैयार हो गई है। पश्चिमी अफ्रीका के नेताओं की गाम्बिया के राष्ट्रपति याहिया जमे से मुलाकात कर उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मनाने की अंतिम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अर्दवान ने कहा है कि तुर्की के सभी सैन्य बलों को साइप्रस से नहीं हटाया जाएगा। अमरीकी संसद की खुफिया मामलों की समिति ने राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दखल के आरोपों की जांच करने का फैसला लिया है और आइवरी कोस्ट की सरकार का कहना है कि उसने वेतन को लेकर विद्रोही सैनिकों से समझौता कर लिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया दिलनवाज पाशा ने और आज स्टूडियो संभाला है देवाशीष कुमार ने। आपसे शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।